परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से मीका नबी के पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं उन श्रोता मित्रों को विशेष करके जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर पत्र के माध्यम से हम तक अपनी गवाहियों को पहुँचाते हैं, अपनी आशीषों को हम तक पहुंचाते हैं, अपनी प्रार्थना निवेदनों को हम तक पहुंचाते हैं। जब मैं आपके पत्रों को पढ़ता हूं, तो निश्चित रूप से मैं बहुत आनंदित होता हूं। मुझे अच्छा लगता है आपके पत्रों को पढ़ना और आपके लिए प्रार्थना करना। यदि आप अभी तक पत्र नहीं भेजे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी पत्र लिखें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। तो आइए आज के अध्ययन के लिए भी हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम रेडियो के माध्यम से आपके वचन में से सुनते हैं और मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के आत्मिक आंखों को, उनके कानों को, उनके हृदय और विचारों को आप खोल दें, ताकि जब वे आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनते हैं तो आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उन्हें हर एक प्रकार की बुरी आदतों से, बुराइयों से छुटकारा देने पाए, जो बीमार हैं उनको चंगाई देने पाए, जो नौकरी की तलाश में है उन्हें नौकरी देने पाए, वे आप पर विश्वास कर सकें, भरोसा रख सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आपने उन्हें रचा है, आप उनके जीवन में शांति देना चाहते हैं। पिताजी, आज के अध्ययन पर आप आशीष दें, हम सबके साथ हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अध्याय 6 में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर इसराइल पर मुकदमा करता है। परमेश्वर उनसे पूछता है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने ऐसा क्या किया कि तू उकता गया है, ऊब गया है। यदि कोई गवाह हो तो वह खड़ा हो जाए। परमेश्वर मिस्र से उनको मुक्ति दिलाने के इतिहास को दोहराता है और मोआब के राजा द्वारा बिलाम को उन्हें श्राप देने के लिए बहुत पैसा देकर लाने के बारे में भी वह उल्लेख करता है कि उसके मुंह से परमेश्वर ने श्राप का एक भी शब्द इसराइल के विरुद्ध में नहीं निकलने दिया। परमेश्वर ने उनसे याचना की कि वे मन फिराकर उसके पास लौट आए कि वे दंड ना पाएं। मेरे मित्रों, इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में हमने एक अत्यधिक असामान्य एवं अद्भुत पद देखा है और इस अध्याय में भी पद 6-8 वास्तव में एक महान अंश है। पद 8 वास्तव में एक महान पद है, परंतु मैं मुक्त विचारकों द्वारा दिए गए इसके अर्थानुवाद से सहमत नहीं हूं। परमेश्वर ने अपनी प्रजा से निवेदन किया कि वे उसके पास लौट आएं और अपने घोर पापों से मन फिराएं। उसने उनकी पूर्वकालिक मुक्ति का भी उदाहरण दिया कि उसने कैसे उन्हें मिस्र के दासत्व से छुड़ाया और उन्हें जंगल में सुरक्षित यात्रा करवाई। अब वे परमेश्वर से 4 प्रश्न पूछते हैं जो वास्तव में उत्तम प्रश्न हैं और उनके उत्तर अति महत्वपूर्ण हैं। पिछले अध्ययन में मैंने इसे कहा था, लेकिन मैं अपने नए श्रोताओं के लिए इसमें दोहराना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक धर्मनिष्ठ व्यक्ति पूछता है, मैं अपने परमेश्वर के निकट कैसे जा सकता हूं। मूर्ति पूजक का उत्तर उसकी मूर्ति में है। वे सोचते हैं कि उनके कष्ट उनके मूर्ति के क्रोध का परिणाम है और उन्हें उसके क्रोध को शांत करना होगा। इसराइल द्वारा पूछा गया प्रश्न वैधानिक है और कोई भी बुद्धिजीवी यह प्रश्न अवश्य पूछेगा। अतः मेरे मित्रों, हमने देखा है कि परमेश्वर कदम कदम पर इसराइल का विश्वास योग्य रहा है। उसने उनकी रक्षा की है, उन्हें समृद्धि प्रदान की, उनके लिए लाल सागर पार करने जैसे चमत्कार किए और यर्दन नदी के पानी को भी रोका। बैरियों से उनका भय उत्पन्न किया ताकि बैरी उनके नाम से डरें। बैरियों को उन्हें श्राप देने से रोका, परंतु इसराइल परमेश्वर का निष्ठावान नहीं रहा। जी हां, वे परमेश्वर से प्रश्न करते हैं, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? उनका दूसरा प्रश्न है, क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के पशु लेकर उसके सम्मुख आऊं? तीसरा प्रश्न है, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? चौथा प्रश्न तो सीमा पार कर जाता है, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दे दूं? मेरे मित्रों, वे परमेश्वर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि वे अपने पुत्र या पुत्री अर्थात पहलौठे को, पहले पुत्र या पुत्री को परमेश्वर के लिए बलि करने की बात पूछ रहे हैं। परमेश्वर कहता है, न्याय के काम कर, कृपा से प्रीति रख और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी उसके लिए इस प्रकार के बलि को चढ़ाए। परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि आप न्याय से अपने जीवन को चलाएं, उससे प्रीति करें, परमेश्वर का भय माने। मेरे मित्रों, आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मीका नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ें। मीका 6 अध्याय के 6 पद में लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? ध्यान दीजिए, उनका पहला प्रश्न था, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के साथ समस्या क्या है? वह हमसे अप्रसन्न क्यों है? हम धर्म के सब काम तो कर रहे हैं, फिर भी वह अप्रसन्न क्यों है? हम आराधनालय में जाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, पाठ करते हैं, उसने जैसा कहा है हम वैसा ही कर रहे हैं, फिर भी वह हमसे अप्रसन्न क्यों है? परमेश्वर ने कहा था कि वे उससे संबंध बनाए रखें जो वे नहीं कर रहे थे। समस्या हम यहां पर देख सकते हैं, जो परमेश्वर ने कहा वे वह नहीं करके दूसरा कुछ कर रहे थे जिसे परमेश्वर ने उन्हें नहीं कहा है। आगे लिखा है, मैं क्या लेकर ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? मैं उसे क्या चढ़ाऊं? मैं उसे क्या दे सकता हूं? वह तो बहुत दूर स्वर्ग में रहता है और मैं यहां पृथ्वी पर हूं। मैं उससे संपर्क कैसे स्थापित करूं? मैं उसे कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? मेरा उद्धार कैसे होगा? फिलिपी के कारावास में अधीक्षक ने पौलुस से पूछा था, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, अर्थात मैं परमेश्वर के साथ कैसे उचित ठहरूं? यह एक अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में कोई भी बुराई नहीं है और पौलुस ने उससे बताया कि परमेश्वर पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि उनका दूसरा प्रश्न था, क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? परमेश्वर ने उन्हें 5 बलियों को चढ़ाने का निर्देश दिया था जिनके द्वारा वे परमेश्वर के निकट आ सकते थे। इसे हम लय व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ते हैं। अतः वे पूछते थे कि क्या यह विधि पर्याप्त नहीं? मनुष्य का तर्क उसे गिरा देता है और वह सोचता है कि परमेश्वर केवल मांग करता है, मुझे उसके लिए कुछ करना है। यह मनुष्य का घमंड है। मेरे प्रियो, हम दान देकर अति संतुष्ट होते हैं। विश्वासी जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, वे सोचते हैं, मैं कलीसिया का सदस्य हूं, मैं दान देता हूं, मैं कलीसिया के काम में शामिल रहता हूं, मैं लड़ाई झगड़े भी नहीं करता हूं, मुझे सब पसंद करते हैं, इससे अधिक परमेश्वर को और क्या चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी कुछ करना है। मेरे प्रियो, लोग प्रभु यीशु से पूछते थे, परमेश्वर के काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 28 और 29 पद में प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। तब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में देखते हैं, जहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की बलि और भेंट और यात्रा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर साफ साफ लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु पर विश्वास करना है और उसके द्वारा आपको मुक्ति, मोक्ष और उद्धार की प्राप्ति होती है। परमेश्वर बस यही कहता है कि विश्वास कर। जी हां, विश्वास कर्मों का विपरीत है। उद्धारक विश्वास कर्म उत्पन्न करता है, परंतु कर्म से उद्धार नहीं है। इस पर ध्यान दीजिए कि हम उद्धार पाने के द्वारा अच्छे कर्मों को करते हैं। अच्छे कर्म करके हम उद्धार नहीं पाते हैं। यह उनका दूसरा प्रश्न था, जो एक सामान्य प्रश्न है। मेरे मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हुए मीका नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? लिखा है, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? उनके कहने का अर्थ है कि हमने इतना सब कुछ किया है, क्या परमेश्वर चाहता है कि हम और भी कुछ करें? वर्षों पूर्व मैं एक प्रभु के दास से मिलने गया हुआ था और एक धनवान व्यक्ति के साथ मैं वॉलीबॉल खेल रहा था। वह DCYMA का सदस्य था। उसने बड़े दिन की एक पार्टी बुलाई और मुझसे कहा कि उसका धर्म है कि वह बड़े दिन पर अपने कर्मियों को भत्ता दे। उसने मुझे यह भी बताया कि वह अनेक अन्य मसीहों की भी सहायता करता है, सेवाओं में दान देता है। उसने कहा कि वह कलीसिया को भी दान देता है। परमेश्वर को और क्या चाहिए? दूसरे शब्दों में, वह 1 मील की अपेक्षा 2 मील जाता है। प्रभु के लिए वह बहुत खर्चा करता है। यही तो एक प्रश्न है, क्या हमें अपने दान में अधिक उदारता दिखाना है? अधिकांश विश्वासियों का सोचना है कि वे परमेश्वर के लिए, उनके नाम के लिए पर्याप्त दान नहीं दे रहे हैं। ये लोग धर्मनिष्ठ तो हैं, परंतु क्योंकि उन्होंने उद्धार नहीं पाया है, इसलिए वे सोचते हैं कि उन्हें और अधिक कुछ करना है, जबकि वे कलीसिया के सदस्य तो हैं। मेरे मित्रों, झूठे प्रचारक इसका लाभ उठाकर विश्वासियों को अधिकाधिक देने के लिए उत्साहित करते हैं और उन्हें लूटते हैं, और लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से परमेश्वर उनसे प्रसन्न होगा। वे सोचते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न होकर उन्हें शाबाशी देगा, उन्हें आशीष देगा। अब उनका चौथा प्रश्न आप सुने, जो सीमा पार करता है। चौथा प्रश्न है, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? उन्होंने यह प्रश्न इसलिए पूछा कि अन्य जातियां बाल देवता और मोलेक की पूजा में नर बलि चढ़ाते थे और इसराइल द्वारा उनकी पूजा के प्रमाण भी पाए गए हैं। दक्षिणी राज्य यहूदा के दो राजाओं ने भी अपने संतान को होम बलि करके चढ़ा दिया। क्या परमेश्वर यही चाहता था? मेरे प्रियो, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इसराइल से कभी भी नर बलि नहीं मांगी थी। निसंदेह परमेश्वर ने मनुष्य और घरेलू पशुओं के पहलौठे अपने लिए अवश्य अलग करवाए थे, परंतु नर बलि के लिए उसने कभी भी नहीं कहा। मैं इसके अनेक संदर्भों में से कुछ देकर अपनी बात सिद्ध करना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक में परमेश्वर ने इसराइल को निर्देश दिए थे। उदाहरण के लिए गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसके 15 पद को देखें। सब प्राणियों में से जितने अपने अपने मां के पहलौठे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाएं, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौठे हों, वे सब तेरे ही ठहरें, परंतु मनुष्य और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम लेकर छोड़ देना। परमेश्वर चाहता था कि पहलौठा नर उसी का हो जिसे छुड़ाने के लिए चांदी का मूल्य चुकाना होता था। परमेश्वर ना तो मनुष्य को ना ही किसी अशुद्ध पशु की बलि चाहता था। इसका अर्थ है कि मनुष्य भी अशुद्ध है। मेरे मित्रों, हम अपनी संतान परमेश्वर को समर्पित करते हैं, जो मेरे विचार में बहुत ही अच्छी बात है। मैंने भी अपनी कलीसियाई सेवा में अनेक बच्चों को परमेश्वर के लिए समर्पित होते हुए देखा है, और उनमें से कुछ तो वास्तव में अति उत्तम विश्वासी निकले हैं। एक बार मैं किसी स्थान पर परमेश्वर के वचन सुना रहा था। वहां एक माता ने अपने पुत्र को लाकर मुझसे कहा कि मैंने उसे शिशु अवस्था में परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वह एक अच्छा विश्वासी है, परंतु मेरे द्वारा समर्पित शिशुओं में से कुछ बड़े होकर जेल भी पहुंचे। अतः परमेश्वर को अपनी संतान समर्पित करना बहुत ही अच्छी बात है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सब आदर्श विश्वासी निकले। निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदेश दिया, क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में जितने हैं अपनी मां के जेठे हों, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। परंतु लय व्यवस्था की पुस्तक 18 अध्याय उसके 21 पद में, परमेश्वर की आज्ञा है, अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना। यहां पर मोलेक देवता के बारे कहा जा रहा है, और ना परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि नर बलि द्वारा तुम मुझे अपवित्र करोगे। साफ साफ कहें कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी उसके लिए नर बलि चढ़ाए। लोग मुझसे कहते हैं, काश आपका पुत्र भी आपके ही समान एक प्रचारक बने। यही हमारी प्रार्थना है, परंतु मेरी प्रार्थना यह नहीं है। पिता होने के कारण मेरा इच्छा यही है कि वे उद्धार पाएं और प्रभु में बढ़ें और उसकी संगति में बने रहें। तदुपरांत परमेश्वर जैसा चाहे वैसा उसको काम में ले, उसको इस्तेमाल करे। मैं उसे शिक्षा दूंगा, वचन दूंगा, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे उपयोग में लेगा। चाहे वह दवाई बेचे या गड्ढा खोदे, जैसा परमेश्वर चाहे वैसा ही होगा। हम अपनी संतान को जिसमें पतित स्वभाव है परमेश्वर की सेवा के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आज लोग परमेश्वर को अपना पहलौठा देना छोड़कर उन कमजोर और दुर्बल लोगों को सेवा के लिए भेजना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर उत्तम चाहता है। पहलौठे का मतलब यह है कि प्रथम भाग परमेश्वर का है, ताकि वह उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। मेरे मित्रों, क्या आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? क्या आप अपने पहलौठे को परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, या आप अपने उस बच्चे को परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित कर रहे हैं जिसे आपने तुच्छ जाना है, जिसे समाज ने तिरस्कृत कर दिया है? क्या आप उसे परमेश्वर की सेवा में भेजना चाहते हैं? परमेश्वर कहता है कि उसे पहलौठा चाहिए। आपका पहलौठा, जो आपके पढ़ाई लिखाई में, बुद्धि ज्ञान में, समझ में अच्छा है, विश्वास में अच्छा है, उसे परमेश्वर के लिए आप दें, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उसे इस्तेमाल कर सके, आत्माओं को जीतने के लिए उसे उपयोग कर सके। मेरे मित्रों, आज हम में से कई लोग इसी प्रकार के प्रश्न में उलझे हुए हैं कि हम परमेश्वर को क्या दें, हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। हम उसे क्या दे सकते हैं? जो कुछ भी हमारे पास है, ये सब कुछ उसी का है। क्या हम उसे कुछ दे सकते हैं? वह आपसे कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता है कि आप अपने पापों से मन फिराकर उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उससे प्रेम करें। यही वह आपके जीवन में देखना चाहता है। मेरे प्रियो, आइए आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने जीवन में जांचें और देखें कि हम कहां पर हैं। क्या आज ये प्रश्न मेरे प्रश्न है? यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने भी अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।